तो मैं यहाँ पर प्रतिदिन भगवद गीता के कुछ एक श्लोकों पर एक साथ चर्चा की जाती है। ये भगवद गीता भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व बोली थी, आप सब जानती हैं, कोई नई बात नहीं बता रहे हम। परंतु इसके ऊपर हजारों कमेंट्रीज टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, इसके एक एक श्लोक के ऊपर इतनी मोटी मोटी एक एक किताब लिखी जा चुकी है, और फिर भी उसका जो विस्तार नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे हमारे को 4-5 श्लोक जो है एक घंटे के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर पूरी इसको कहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है समझना हम जैसे, एटलीस्ट मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि कलयुग के अंदर हमारी बुद्धि जो होती है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधिता। अगर हम भगवद्गीता को समझ सकते होते तो हमारी स्थिति अर्जुन के जैसी होती है। अर्जुन ने सिर्फ 45 मिनट्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं 45 मिनट्स के अंदर ये सारे 700 श्लोक सुने थे, और अर्जुन ऐसे नहीं बोला था इसका तात्पर्य क्या है, जैसे इसमें तात्पर्य दे रखा है ना प्रभुपाद जी ने, इसका ट्रांसलेशन तो करो, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे आप संस्कृत में, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे सीधे संस्कृत के श्लोक बोले थे, और श्लोकों को सुनने के बाद अर्जुन ने क्या बोला आप जानते हैं, क्या बोला अर्जुन ने, नष्ट मोहा। आप सब जानते हैं, अभी आपको पता नहीं है कि मैं क्या जानने वाला पूछने वाला हूं, इसलिए कई बार कभी हमसे प्रश्न पूछते हैं हमें पता होता है उसका उत्तर, हम सोचते हैं कि पता नहीं है प्रभु जी जो पूछ रहे हैं इनके मन में क्या उत्तर होगा, इसलिए उत्तर नहीं देते। भगवद गीता के 18वें अध्याय में ये श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि यत इच्छसि तथा करु। आपको बताते हैं कौन सा श्लोक है ये जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं नष्ट, जस्ट मेरे को नंबर याद नहीं है श्लोक का, नष्ट मोह गत संधि, हाँ 73 नष्ट मोह गत संदेह तपसादात मई अच्युता। यही है ना, हाँ 73 नष्ट मोह गत, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मई अच्युता। हे अच्युत, आपकी वाणी को सुनने के बाद मेरा मोह समझ रहे ना, बिविल्डरमेंट, जब कंफ्यूजन है हमारी, यहाँ पे मोह का मतलब वो नहीं है कि जो बच्चे के प्रति मोह होता है, वो भी एक कंफ्यूजन ही है, जो कंफ्यूजन है हमारी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, वो कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं मेरी समाप्त हो गई है। और क्या स्मृति लब्ध्वा, मुझे जो है अभी स्मरण शक्ति, मेरी बुद्धि तेज हो गई है, सब कुछ समझ में आने लग गया है। और कैसे हुआ ये, तत्प्रसादात मई अच्युता, आपकी कृपा से हुआ ये। स्थितो अस्मि, अभी मैं जो है स्थित हूँ, अभी मैं जो है परेशान नहीं हूँ, पहले मैं बहुत परेशान था, बिविल्डर था जब शुरुआत हुई थी भगवद गीता की। बोलते हैं गत संदेह, संदेहों का नाश हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा। आप कह रहे हैं अर्जुन को भगवद गीता बोलने के बाद कृष्ण कहते हैं यत इच्छसि तथा करु, इसी से एक दो श्लोक पहले हैं। तो अर्जुन कहते हैं करिष्यसि वचनम तवा, करिष्यसि वचनम तवा, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। तो यदि हम लोग भगवद गीता समझ सकते होते तो हम भी वही कर रहे होते जो कृष्ण चाहते हैं, सच्ची बात है ना। हम वो नहीं कर पा रहे तो ये सीधा सीधा प्रमाण है कि हम नहीं समझ पा रहे, और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कि हम दुर्भाग्यवश कलयुग के अंदर जन्म लिए, हमारी बुद्धि उतनी तेज नहीं है समझ सके। और फिर भी अभी हमें 45 मिनट्स के अंदर 5 श्लोकों पर चर्चा करनी है, तो आप सब भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरे लिए भी और अपने लिए भी मंगलाचरण के माध्यम से कि हम इन 5 भगवद्गीता के श्लोकों को समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ಶ್ರೀರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೇ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಗಾಯತೆ ಗಿರಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯೇಶ್ವರಂ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯಾದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ವಿಷ್ಣು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಪಿಛಲೆ ಸೋಮವಾರ ಯಾ ಪರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆ ಚೌಥೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ ಪಹಲೆ ಸೆ ಲೇಕರ್ ದಸವೇ ಶ್ಲೋಕ ಪರ ಚರ್ಚಾ ಹೋಯಿ ಥಿ, ಐಸಾ ಹಿ ಹೈ ನಾ? ದಸ ಶ್ಲೋಕೋ ಪರ ಚರ್ಚಾ ಹೋಯಿ ಥಿ ನಾ ಪಿಛಲಿ ಬಾರ್, ಜಿಸ್ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಜೋ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ಮೈನೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಭಗವಾನ್ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಕೋ ದಿಯಾ ಥಾ, ಸೂರ್ಯ ಕೆ ದೇವತಾ ಕೋ ದಿಯಾ ಥಾ. ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಹೈ ನಾ? ಔರ್ ಫಿರ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಇಚ್ಛವಾಕು ಕೋ ದಿಯಾ, ಇಚ್ಛವಾಕು ಇನ್ಹೇ ಮನು ಕೋ ದಿಯಾ, ಔರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ರಾಜ ಋಷಿಯೋ ಕಿ ಯೇ ಪರಂಪರಾ ಚಲಿ ಆ ರಹಿ ಥಿ. ಔರ್ ಯೇ ಪರಂಪರಾ ಟೂಟ್ ಜಾನೆ ಪರ್ ಆಜ್ ಮೈ ಯಹಿ ಜ್ಞಾನ ತುಮ್ಹಾರಕೋ ದುಬಾರಾ ದೇ ರಹಾ ಹೂಂ. ಕ್ಯೋ? ಕ್ಯೋಂಕಿ ತುಮ್ ಮೇರೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ? ಮಾತಾ ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಹೈ. ಏಕ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಏಕ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಹಿಂದಿ, ಔರ್ ಜಬ್ ದೋನೋ ಕಂಬೈನ್ ಕರ್ ದೇತೆ ಹೈ, ದೋನೋ ಜಬ ಮಿಲ್ ಜಾತಿ ಹೈ ತೋ ಹೋತಿ ಹೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಖಾ ಔರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಸಖಾ ಔರ್ ಡಿವೋಟಿ ಹೈ. ಕೃಷ್ಣ ಕಹನೆ ಕ್ಯೋಂಕಿ ತುಮ್ ಮೇರೇ ಸಖಾ ಔರ್ ಡಿವೋಟಿ ಹೋ, ಭಕ್ತ ಹೋ, ಇಸ್ಲಿ ಮೈ ತುಮ್ಹಾರಕೋ ಯೇ ಜ್ಞಾನ ದೇ ರಹಾ ಹೂಂ. ಭಗವಾನ್ ಕಿಸಿ ಬುದ್ಧು ಕೋ ಜ್ಞಾನ ನೀ ದೇತೆ ಹೈ, ಬೇವಕೂಫ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ನೀ ಹೈ, ಯೇ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹೈ. ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಲೋಗ್ ಹೀ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿತ್ರತಾ ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ರಖ ಸಕತೆ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತ ಬನ್ ಸಕತೆ ಹೈ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಸುಮೇಧಸಾ, ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಸುಮೇಧಸಾ ಯಸ್ಯಾ ಸತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಚಲೋ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಸಾವೇ ದೇವತಾಓಂ ಕೆ ಗುಣ ಆ ಜಾತೆ ಹೈ. ಯಸ್ಯಾ ಸತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ, ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಜೊ ಹೈ ಅಕಿಂಚನ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಿ ಹಮಾರಕೋ ಕುಛ್ ಪೇ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹಿ ಹೈ. ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೇ ಗುಣೇ ಗುಣೇ ತತ್ರ ಸಮಾಸಿತಾ ಸುರಾ, ಔರ್ ಜಿಸ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಯೇ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಸಾರೇ ದೇವಿ ದೇವತಾಓಂ ಕೆ ಗುಣ ಭೀ ಆ ಜಾತೆ ಹೈ. ಔರ್ ದೇವಿ ದೇವತಾಓಂ ಮೇ ಭೀ ಉತ್ನೆ ಗುಣ ನಹಿ ಹೈ ಜಿತ್ನೆ ಗುಣ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಆನೆ ಲಗತೆ ಹೈ. ಹರಾ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತ ಮಹತ್ ಗುಣ ಮನೋರಥೇ ನಾಸ್ತಿ ಧಾವ, ಔರ್ ಜೋ ಹರಿ ಕೆ ಭಕ್ತ ನಹಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಕಹಾಂ ಗುಣ ಮಿಲ್ತೆ ಹೈ, ಅಚ್ಛೆ ಗುಣ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ನಹಿ ಹೋತೆ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ವೋ ಅಪನೆ ಮನ್ ಕೆ ರಥ ಪರ ಆರೂಢ ಹೋಕೆ ಭಾಗ್ತಾ ರಹತಾ ಯಹಾಂ ವಾ ಗಧೆ ಕಿ ತರಹ. ಗಧಾ ಭೀ ಕಭಿ ಕಭಿ ಪ್ರಣಾಮ ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಸಾಧುವೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ, ಜಬ್ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಠ ಕೆ ಊಪರ್ ಭಾಗವತಂ ರಖ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ವೈಸಿ ಹಮಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೈ, ಹಮಾರಕೋ ಅಭಿ ವ್ಯಾಸ ಆಸನ ಮೇ ಬಿಠಾಯಾ ಹೋ ತೋ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ಪರಂತು ಜಬ್ ಹೃದಯ ಕೆ ಅಂದರ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಕಿಸಿ ಕೆ ಭಕ್ತಿ ನಹಿ ಜಾಗೃತ ಹೋತಿ ತಬ್ ತಕ್ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ದೇವಿ ದೇವತಾಓಂ ಕೆ ಗುಣ ಜಾಗೃತ ನಹಿ ಹೋ ಸಕತೆ. ದೇವಿ ದೇವತಾಓಂ ಕೆ ಗುಣ ತೋ ಬಹುತ್ ತುಚ್ಛ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ಫಿರ್ ಅಸಲಿ ಗುಣ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಜಾಗೃತ ಹೋನೆ ಲಗತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಬತಾ ರಹೇ ಕಿ ಮೈ ತುಮ್ಹಾರಕೋ ಜ್ಞಾನ ಇಸ್ಲೇ ದೇ ರಹಾ ಹೂಂ ಕ್ಯೋಂಕಿ ತುಮ್ ಮೇರೇ ಭಕ್ತ ಹೋ ಔರ್ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಕಾರಣ ತುಮ್ನೆ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಮೈತ್ರಿ ಕಾ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಭೀ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಿಯೇ ಜಾ ಸಕತೆ ಹೈ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೈ ಬಾರ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ನಾ, भगवान का सेवक बन के, भगवान का मित्र बन के, भगवान का पिता बनने की भी कई लोगों की अभिलाषा रहती है, और भगवान का क्या बन के, भगवान के साथ प्रेम का संबंध, दाम्पत्य प्रेम का संबंध रख के। ये चार प्रमुख हैं जिनके माध्यम से भक्त लोग भक्ति करना चाहते हैं। और एक इससे सबसे पहले जो हमने नहीं बताया वो क्या होता है, केवल भगवान का स्मरण करके, सिर्फ ये जान करके कि भगवान परम भगवान है। एक और भी होता है भगवान का संबंध, बोला हमने ना पिता बन के, चलो ठीक है, हाँ वो भी बताया सेवक बन के। हाँ पांचवा जो सबसे नीचे वाला है जो हमने नहीं बताया था पहले, वो है शांत बोलते हैं इसको, शांत। उसके अंदर भगवान के साथ हम केवल ये जानते हैं कि भगवान परम भगवान है और मैं एक छोटा सा जीव हूं। जानने से क्या होगा, वो सेवा करनी चाहिए ना फिर, इसीलिए इस संबंध को वैष्णव लोग ज्यादा महत्व नहीं देते, केवल जानने वाले को। तो फिर जब अर्जुन को इतना सब कुछ बताया भगवान ने, अर्जुन ने कहा एक मिनट बता दिया आपने, एक बार मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप तो बोलते जा रहे हो फटाफट बोलते गए, भगवान चार पांच श्लोक बोल दिए, एक मिनट रुको, आपने ये तो नहीं बताया कि भैया आप तो अभी मेरे साथ ही जो जन्म लिए थे संसार में, और वो विवस्वान कहां 20 लाख साल पहले, वहां उस टाइम तो आप थे भी नहीं। फिर कहते हैं कृष्ण, तुम भक्त बन गए मेरे, मित्र बन गए, अभी भी तुम इतने बुद्धू हो, तुम्हारे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुम बुद्धू हो। जीवात्मा भगवान के सामने क्या है, एक शिष्य गुरु के सामने क्या होता है बताइए, एक शिष्य का अपने गुरु के सामने क्या महत्व है, छोटा सा बुद्धू व्यक्ति है ना, भले ही बाहर जाके पूरे ज्ञान का बखान करता हो पर गुरु के सामने, और यदि वो गुरु के सामने भी ज्ञान का बखान कर रहा है तो वो एक नंबर का मूर्ख आदमी है, वास्तव में बुद्धू है वो फिर, है ना। गुरु के सामने हमारे को एकदम झुक के रहना चाहिए, यदि हमारे को बहुत कुछ ज्ञान है तो भी समझना चाहिए कि ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा से है। तो अर्जुन को कहते हैं कृष्ण कि हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, परम भगवान होने के कारण मुझे सबके सब याद है, तुम भूल गए हो। फिर भगवान बताते हैं कि और हम लोग जन्म क्यों होते हैं, तुम मेरे हमेशा मेरे मित्र हो, ऐसा नहीं है कि तुम अभी अभी मेरे मित्र बने हो, तुम अनादि काल से मेरे मित्र हो। और हर बार मैं यहां पे क्यों आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। जब जब यहां पे धर्म की हानि होती है तब तब मैं क्या करने आता हूं, और अधर्म का बढ़ावा होता है तो मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। और ऐसे में मैं क्या करता हूं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु धर्म का बढ़ावा देने वाले हैं उनका मैं पालन करता हूं आकर के, और जो अधर्मी लोग हैं उनका विनाश करता हूं। तो कोई पूछ सकता है कि कभी कभी तो आप लोग बताते हो कि भगवान इतना शक्तिशाली है कि उनकी इच्छा शक्ति से ही पूरी सृष्टि का ब्रह्म प्रकट हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना, इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, कि पूरी सृष्टि स्थिति प्रलय शक्ति आदि जितना भी कुछ हो रहा है भगवान की केवल इच्छा करने मात्र, इच्छा करने से पहले ही हो जाता है सब कुछ। तो फिर भगवान को इन छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए क्यों आना पड़ता है, प्रश्न बनता है ना ये। तो भगवान पहले बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम, प्राइमरी रीजन होता है परित्राणाय साधु नाम, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अपनी लीलाओं का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं यहां पे आकर के मेटीरियल वर्ल्ड में, देखो मैं लीलाएं कर रहा हूं कितनी सुंदर है, और जो भक्त होते हैं वो उसमें आनंद लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको सुनकर आनंद लेते हैं। इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन भी जरूरी है, डेमो देना भी, उसके बाद व्याख्यान। जैसे भगवान ने पहले लीला दिखाई, भैया देखो ये पूरा वीडियो है मेरी लीला का, फिर उसके बाद भागवतम में लीला के साथ साथ फिलॉसफी भी दे दी, है ना। वैसे ही प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं असली रस क्या है, असली रस क्या है, नाम संकीर्तन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान के नामों का, है ना, प्रेम रस में नाम संकीर्तन, भगवान के रस कीर्तन जो है प्रेम रस से भरा हुआ है। क्योंकि हमारी जीभ के ऊपर अविद्या के छाले हो रखे हैं, इसलिए हमारे को उसका स्वाद नहीं मिल रहा है, परंतु फिर भी उसमें कुछ आनंद आता है, आता है ना? सच्ची बात है ना, कीर्तन में सबको आनंद आता है, ऐसा कोई है आप में जिसको कीर्तन में आनंद नहीं आता हो? जनरली बोल सकते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अनुभव है ये हमारा कि जब तक मंदिर में कीर्तन होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब कीर्तन में भाग लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जैसे ही प्रवचन होता है मंदिर खाली है, होता है ना ऐसा। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन हरिनाम वो किए थे, जगन्नाथ रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा में 10,000 से ज्यादा लोग थे। जैसे प्रभुपाद जी ने कीर्तन खत्म किया, प्रभुपाद ने, सो कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, 50% गायब। फिर धीरे धीरे और कम हो गए। तो प्रभुपाद जी बोले, क्योंकि कलयुग के अंदर लोग फिलोसफी को समझ ही नहीं सकते इतनी आसानी से, इसलिए आवश्यकता है श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। ये उस फिलोसफी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, लाइव क्या बोलेंगे इसको, सजीव प्रदर्शन है। हमारी फिलॉसफी, जितनी भी भगवत गीता की और जितनी भी सारी फिलॉसफी है, सबका लक्ष्य क्या है, हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावना के स्तर पर लेकर आना। और कृष्ण भावना के स्तर पर आने के बाद कोई क्या करता है, आनंद का अनुभव करता है। और आनंद का अनुभव होने पर क्या होता है, ऐसे तो नहीं होता मैं बैठ गया, ऐसा तो नहीं होता। आनंद का अनुभव होने पर आदमी नाचता है, गाता है ना, और वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के माध्यम से हमें असली में पता लगता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भावना क्या है। और उस नाम संकीर्तन को और मजबूत करने के लिए अपने जीवन में, उसके अंदर जो असली में रस है उसको और समझने के लिए, उसको हम कैसे प्राप्त करें जो नाम संकीर्तन में रस है, कैसे नाम संकीर्तन के माध्यम से हम भगवान के रूप को देख सकें, उसको समझने के लिए हम साथ साथ फिलॉसफी को समझते हैं, कृष्ण कथा को। हम आगे इसको और चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो जब अर्जुन को बताया भगवान ने कि मैं यहाँ पे बेसिकली भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूं, सेकेंडली जब आ ही गया तो मार भी दे तो 4-5 आदमियों को, भगवान को भी तो कुछ करना है भाई, वहां पर तो कोई लड़ता नहीं है भगवान से, भगवान के धाम में कौन लड़ेगा भगवान से, कोई लड़ेगा क्या आके? और लड़ते भी हैं भगवान, कुश्ती खेलते भी हैं अपने ग्वाल वालों के साथ, वो तो आनंद की खेल होता है, पर असली में तो कोई फाइट करता नहीं। यहाँ पे असुर भरे हुए हैं जो भगवान से लड़ना चाहते हैं, चलो आपकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। अभी आगे जो श्लोक है वो यही है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस तथे भजाम्यम, जो मुझसे युद्ध करना चाहता है मैं उससे युद्ध कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान आनंद देते हैं भक्तों को, और जो युद्ध करना चाहते हैं उनको भी युद्ध का आनंद देते हैं, और फिर उनको मार के अपने धाम भेजते हैं। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। फिर इसके पश्चात भगवान फिर बताना शुरू करते हैं, और जो फिर भगवान क्या कहते हैं कि मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, क्या देता हूं, मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, लीलाएं करता हूं, लोग देखें, आनंद लें। और जो इन लीलाओं को समझता है, कैसे, जन्म कर्मचा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, 9वां श्लोक, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति। सो अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं बात, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि ये जो मैं लीलाएं करता हूं, एक तो होते हैं बुद्धू लोग, वो भी इन लीलाओं को सुनते हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं, कृष्ण जो है एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी था, मर गया है बेवकूफ, सारे तुम्हारे ऐसे थोड़े ना होते हैं। हमारा जो विजन है लिमिटेड है, टाइम फैक्टर के अंदर बना हुआ है। हम सोचते हैं जो भी चीज पैदा हुई खत्म होनी चाहिए, जो भी चीज बनी है वो खत्म होनी चाहिए, इसलिए कृष्ण भी पैदा हुआ तो हमारे यहाँ बड़ा बड़ा आदमी था। और कुछ उनसे ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास बेवकूफ होते हैं, कुछ सेकंड क्लास बेवकूफ होते हैं, वो क्या कहते हैं, देखो भाई कृष्ण जो है वो आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे, जो कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है जो हम देख रहे हैं, बोलते हैं ना, कृष्ण का मतलब है कृष्ण के अंदर जो कोई, जो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण के अंदर जो ज्योति है वो कृष्ण है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। आप लोग नहीं समझोगे, हमें समझाते हैं ऐसे, आप लोग नहीं समझोगे, हम भी कहते हैं सही बात है, हम आपकी बात को समझना भी नहीं चाहते। कृष्ण खुद बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। कृष्ण थोड़ा कह रहे मदात्म भक्त मत भक्त, मेरी आत्मा के भक्त बनो। नाम चिंतामणि, भगवान के नाम को चिंतामणि बताया गया है। नाम जो है, नाम में और रूप में कोई भेद नहीं है, तो रूप में और भगवान के इंद्र में कोई भेद होगा? तो ये जो है ये थोड़े सेकंड क्लास के बेवकूफ है, एटलीस्ट कुछ तो स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। और इनके ऊपर थोड़ा एक और लेबल होता है, वो कहते हैं कि कृष्ण के अंदर कुछ नहीं है। कृष्ण जो है वो सही बात है, परम भगवान है, पर अल्टीमेटली कृष्ण क्या है? निराकार। कृष्ण क्या है? निराकार। ये जो परम सत्य निराकार ब्रह्म ज्योति है, परमात्म स्वरूप, ओम ओम, ओम का भी रूप होता है वास्तव में। और वो जो है ज्योति, जब वो ज्योति के अंदर माया का विकार आ जाता है, ये फर्स्ट क्लास बेवकूफ इनको कहते हैं मायावादी। जब उस निराकार ब्रह्म ज्योति आनंद स्वरूप ज्योति के अंदर जब क्या आ जाता है, माया का विकार आ जाता है। विकार समझते हैं ना, कंटेमिनेशन आ जाता है माया का, तब वो रूप प्रकट होता है कृष्ण के रूप में। तो ये माया का जो है प्रकाश है कृष्ण का रूप, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास, बताइए क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास बेवकूफ। आप बोल सकते हैं सरेआम, ये कोई झूठ थोड़ा है, भगवद गीता में से बता रहे हैं हम, भागवतम बता रही है, वेद बता रहे हैं, सारे वेद बताते हैं। रूपम ही परमम श्यामम पूरी मधुपुरी वदा, कि रूपों में सबसे परम रूप श्याम का है, मतलब श्याम सुंदर कृष्ण, और पुरियों में सबसे बड़ी पुरी, मतलब जो क्षेत्र है, जो देश है, उन पुरियों में सबसे जो रहने का जो स्थान है, सबसे श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं फर्स्ट क्लास, वो बोलते हैं जब उस परम निराकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप जिसके ऊपर वो ध्यान लगाते हैं और कभी लगा नहीं पाते, वो उसके अंदर जब विकार आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? कृष्ण बन जाता है। परंतु भगवद गीता का ज्ञान, और वो भगवद गीता से ही बोलते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भगीता के अंदर से ही निकाल निकाल के बोलते हैं, और भगवद गीता के अंदर ही कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही निराकार ब्रह्म का स्रोत हूं। आज तक किसी को ऐसा अनुभव है? आप सब सबसे पूछ रहे हैं, आप में से किसी को यह अनुभव हो तो हमें बता सकता है कि आपके घर में आपने एक बटन दबाया, बहुत तेज प्रकाश हुआ और उसमें से बल्ब निकला, किसी को ऐसा अनुभव है? हाँ, अनुभव क्या है आपको? हाँ, बल्ब में से प्रकाश निकलता है, प्रकाश का स्रोत होता है। ऐसा नहीं होता कि स्रोत में से कुछ निकल, मतलब प्रकाश में से कुछ निकल के आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब पहले बहुत पानी बरसा और उसके अंदर से पहाड़ निकला, क्या बेवकूफ आदमी है। पानी में से पहाड़ नहीं, पहाड़ में से पानी छूता है ना। वैसे ही स्रोत है प्रकाश का, ये जो ब्रह्म ज्योति है उसका स्रोत क्या है? कृष्ण है, कृष्ण के शरीर से निकलने वाली आभा। और वास्तव में जिस ब्रह्म ज्योति की ये लोग बात करते हैं वो तो पूरे शरीर की आभा भी नहीं है, भगवान के नख से निकलने वाली आभा है, चरणों के नख से। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि वशेष वसुधादि विभूति बन्नम तद ब्रह्म असंग अशेष विभूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो, जिनकी प्रभा से निकलने वाले प्रभा में, जिनकी शरीर की निकलने वाली प्रभा में अनंत कोटि ब्रह्मांड बह रहे हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंदम के हम प्रणाम करते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास बेवकूफ लोग हैं। तो कृष्ण कहते हैं इसीलिए अब जो व्यक्ति मेरी इन लीलाओं को इन बेवकूफों की नजरों से नहीं देखता कि भैया साधारण मनुष्य की तरह मैंने जन्म लिया और वैसे ही मर गया, मैं ऐसा सोचता नहीं, जो मेरी जन्म कर्म की लीलाओं को कैसे समझता है? तत्व से समझता है, तत्वतः। फिर उसके साथ क्या होता है? उसको इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। कहां कहां जाता है वो व्यक्ति जो तत्व से समझता है? भगवान के परम धाम को जाता है, वहां से वापस नहीं आता। अब इनमें से कुछ लोग होते हैं समझने वाले, कई प्रकार के होते हैं, समझने एक समझने वाला इस प्रकार का होता है, वो समझता है, वो स्वीकार करता है भगवान परम भगवान है, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, सब कुछ दिव्य है और हम उनके अंश हैं, केवल इतना समझता है, इसके आगे कुछ नहीं करता वो। इसको कहते हैं शांत रस। इसको कहते हैं, उसने सिर्फ समझ लिया और वो भगवान का स्मरण कर रहा है, हाँ भगवान बहुत महान है जय, और हमेशा ही सोचता है भगवान बहुत महान है, हमेशा ही ऐसा स्मरण करता है वो। तो वो भगवान के धाम में जाता है और भगवान के धाम में कोई सिंपल सी सेवा प्राप्त करता है, पर भगवान इसके आगे क्या चाहते हैं, लविंग एक्सचेंज होने चाहते हैं। एक्सचेंज को क्या कहेंगे, आदान प्रदान। और वो कब हो सकता है, इन लीलाओं को समझ के, तत्व से समझने के बाद जब क्या होता है हमारे साथ, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोधा मन मन मया माम उपाश्रिता भावो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। दसवें श्लोक के अंदर भगवान बोलते हैं, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझे पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अब भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो, लीलाओं का श्रवण करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, जो भगवान ने डेमोंस्ट्रेशन दिया, तभी तो हमारे को भगवान के प्रति आकर्षण जागृत होगा, है ना। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जब कृष्ण आपकी लीलाओं का ही श्रवण करना काफी था, और यही जरूरी भी है ना। भगवान कपिल देव बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, मद आश्रया कथा मृष्टा श्रवंती कथयंतीशा, श्रवंती कथयंतीशा तपंती विविधा स्तापम नैतान मदगत चेतसा। कहते हैं कि जो भक्त लोग मद आश्रय कथा मृष्टा, मेरे बारे में जो बनी हुई कथाएं, जो मेरे बारे में लिखी हुई कथाएं हैं और जो मेरे भक्तों के द्वारा सुनता है इन कथाओं को, वो ना केवल सुनता है, श्रवंती कथे अंतिशा बोलता है इन कथाओं को, तपंती विविधा तापा, उनको इस भौतिक संसार के तीन तापों में तपना नहीं पड़ता। जो हम तप रहे हैं, आपको मालूम है ना, तीन तापों में हम तीन तरह के कष्ट जो हमारे को मिलते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इनमें तपना नहीं पड़ता। क्यों, नैतान मदगत चेतसा, क्योंकि उसका चेत चित वृत्ति जो है हमेशा कहां रहती है, मेरे में रमण करती है, मदगत चेतसा, इसलिए उसको इस संसार के अंदर तपना नहीं पड़ता। इसलिए आवश्यक है भगवान की लीलाओं को सुनने में, भगवान की लीलाओं को सुनने से हमारी भगवान के प्रति प्रीति जागृत होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि जब लीलाओं का श्रवण करना ही इतना महत्वपूर्ण था, जिसका डेमोंस्ट्रेशन भगवान ने दिया, तो इतनी देर से भगवान क्यों प्रवचन दे रहे थे, तुम आत्मा हो, तुम ये हो, तुम कुत्ते नहीं हो, तुम बिल्ली नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम देवता नहीं हो, किन्नर नहीं हो, गंधर्व नहीं हो, तुम मेरे क्या हो, अंश हो, आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, ऐसा प्रवचन क्यों दे रहे हैं भगवान। क्यों भगवान इतनी देर से समझाने पर लगे हुए हैं कि आत्मा मरता नहीं है, ऐसा होता नहीं, वैसा होता नहीं, सूखता नहीं, देहो अस्मिन यथा देहे कोमारम यौवनम जरा वासांसि जीर्णानि यथा विहाया, इस तरह के अलग अलग श्लोकों को बोल करके भगवान क्यों प्रवचन दे रहे हैं इतनी देर से, ये प्रश्न उठता है कि नहीं। जब भगवान के बारे में सुनने से ही, केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से ही हमारे को परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो क्यों भगवान इतनी देर से प्रवचन दे रहे हैं, है ना। रूप गोस्वामी बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जायते सर्व विधि निषेधेशु ए तो ये रेव किंकरा। हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण का विस्मरण मत, कृष्ण को भूलो मत, और जितने भी विधि निषेध हैं वो सब इसके क्या है, इसी एक सिद्धांत के दास हैं कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी कृष्ण को भूलो मत। तो पहला सिद्धांत है हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, वो कैसे होगा, कृष्ण के बारे में सुनने से, कृष्ण की लीलाओं को सुनने से। अब कृष्ण को क्या आवश्यकता है एक और बात बोलने की, मैंने आपको बोला कि हमेशा याद रखना कि इस गिलास के अंदर पानी डाला जाता है। अब मैं बोलूं कभी मत भूलना कि इसके अंदर पानी डाला जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ? नहीं, अब ध्यान से सोचो, ये तो एक सिंपल सा मतलब हुआ, और ध्यान से सोचो, ये गिलास है, इसके अंदर याद रखो इसके अंदर हमेशा पानी डालना, और कभी मत भूलना कि इसके अंदर पानी डालना है। हाँ, क्यों नहीं, देखने में ये एक ही बात है, पर यदि आप और ध्यान से सोचोगे तो इसके अंदर एक और भी मतलब छुपा हुआ है। आप बताएंगे, बताइए। हाँ, क्यों नहीं भूल, मतलब जब याद रखना बोल दिया, मैं हमेशा याद रखूंगा तो भूलने की तो बात ही नहीं आ रही। बहुत इसी विषय को हम समझाना चाह रहे हैं, भगवान भी इसी बात को बोल रहे हैं अपने तरीके से, और रूप गोस्वामी ने भी यही बोला है कि हमेशा कृष्ण को याद रखो, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जायते। इसके अंदर हमेशा पानी डालना, और भूलना मत कि इसके अंदर पानी डालना, क्योंकि हम लोग बुद्धू हैं, हम सुनने के बाद भी दूध डाल सकते हैं इसके अंदर, इस गिलास के अंदर और भी तो चीजें डाली जा सकती हैं, है ना, पानी के अलावा और भी तो कई चीजें डाली जा सकती हैं, दूध डाला जा सकता है, खीर डाल सकता है, कोई हलवा ही डाल देगा इसके अंदर, है ना। भक्त लोगों को जब सुबह प्रसाद मिलता है और उसके अंदर कोई बहुत बढ़िया दाल का हलवा बना होता है, तो हलवा गिलास के अंदर ही हलवा रख देते हैं, दोपहर को खाएंगे, है ना। हमेशा पानी डालना, भूलना नहीं का मतलब क्या है कि तुम कुछ और मत डाल देना। तो इसीलिए भगवान को पता है हमारी प्रवृत्ति है मंद सुमंद मतय मंद भाग्य सुपाद्रता, इसीलिए भगवान एक तरफ तो बता रहे हैं कि मेरे बारे में सुनो, मेरा श्रवण करो, पर उससे पहले बता रहे हैं कि तुम क्या हो। वास्तव में ये जानना इतना जरूरी नहीं है, ये जानना इतना जरूरी नहीं है कि कभी मत भूलना, ये अगर हमारे को हमेशा ही याद रहे कि इसके अंदर पानी डालना है तो बात बोलने की जरूरत ही नहीं है भूलना मत, क्योंकि हमारे हम लोगों के अंदर जो है ये हमारी एक प्रवृत्ति है एक्सपेरिमेंट करने की, तो हम दूध भी डाल सकते हैं। इसीलिए हमारे को क्या बता रहे हैं भगवान, साथ ही साथ दूसरी तरफ का ज्ञान भी दे रहे हैं कि भैया तुम लोग आत्मा हो, तुम मरते नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्योंकि अगर हमारे को दोनों चीजें पता रहेंगी, अगर हम कभी कभी भूलने भी वाले होंगे कृष्ण को, तो हमारे को जैसे थोड़ा सा कष्ट मिलेगा तो हमें याद आएगा कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका अंश हूं और मैंने उनकी सेवा छोड़ी इसलिए मैं कष्ट भोग रहा हूं, फिर दोबारा कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो इसीलिए भगवान फिलॉसफी दे रहे हैं साथ साथ, इसलिए फिलॉसफी का बहुत महत्व है। और हमारे को खाली इतना ही नहीं जानना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और क्या हमारे को और भगवान की लीलाओं को, हमारे को साथ ही साथ आवश्यकता रहती है और क्या, कि हम ये समझें कि गलत क्या है, अज्ञान क्या है, ये तो ज्ञान है ना सब, अज्ञान क्या है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे तीन प्रकार के बेवकूफों की, है ना। तो ये अज्ञान है, हमारे को अज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। कई बार हमारे को लोग बोलते हैं कि जब आप लोग खुद कहते हो मायावाद सिद्धांत बोगस है, तो आप खुद उसको क्यों समझाने को पहले तुले रहते हो, इसलिए तुले रहते हैं कि हमारे को अविद्या के बारे में भी पता होना चाहिए अविद्या क्या है, नहीं तो हम उसके अंदर पड़ जाएंगे, हम जानेंगे नहीं तो वो क्या है उसके अंदर, हमारे को पता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है, हमारे को सिर्फ सही सही पता है, गलत के बारे में नहीं पता। किसी दिन आके हमारे को कोई गलत सिद्धांत के ऊपर भी कन्विंस कर देगा, हम कन्विंस हो जाएंगे। एक ऋषि थे विश्वामित्र की तरह ही शक्तिशाली ऋषि थे। विश्वामित्र जी के बारे में आप जानते हैं ना, उन्होंने 60,000 साल तपस्या करी और उसके बाद मेनका आई और मेनका ने क्या किया, उनको तपस्या भंग कर दी और फिर उन्होंने उनके साथ संतान पैदा करी और फिर जो भी आगे हुआ, फिर दोबारा वो भजन में लगे। तो पर एक और ऐसी ऋषि हुए थे, उनको मालूम था ऐसा हुआ, अब उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को क्या सोचा कि इसको पता ही नहीं लगने दूंगा स्त्री नाम की कोई वस्तु होती है संसार में, स्त्री का कोई रूप होता है संसार में, उसको ग्रंथों का अध्ययन कराया, ग्रंथों के अंदर वर्णन है स्त्री के रूप के बारे में, उसको कन्विंस नहीं होने दिया उसके बारे में, समझाया नहीं कभी भी, और तपस्या करवाई, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, खूब तपस्या करी और ज्ञान था उसको, स्त्री को छोड़ के सारा जंगल में रहता था, उस पूरे जंगल के अंदर स्त्री का प्रवेश निषेध था, और गलती से कोई आ भी जाए तो सबको पता था कि ये विश्वामित्र जो हैं उनकी शक्ति, वो जो ऋषि थे ऋषि श्रृंग के पिता, ये जो ब्रह्मचारी उसका नाम श्रृंग था शायद, तो उसके पिता जो थे उनके उनके भय से कोई आता भी नहीं था वहां पे, सबको पता था इन्होंने भी डाल रखा है, और वो कभी दूर नहीं जाने देते थे अपने पुत्र को। एक बार क्या हुआ, साथ ही राज्य में अकाल पड़ गया, राज्य में भारी अकाल पड़ गया किसी पाप के कारण राजा के, मेरे को याद नहीं है पूरा नाम वगैरह सब कुछ। तो वो राजा जो थे उन्होंने जब प्रयास किया जानने कैसे किया, तो ब्राह्मण इकट्ठे हुए, ब्राह्मणों ने तपस्या करी, तो उनको आकाशवाणी हुई कि आपके जो जो अकाल पड़ा है आपके राज्य में, यदि वो ब्राह्मण ऋषि श्रृंग जो है उसके केवल चरण पड़ जाएंगे, चरण के पड़ते ही, पहला कदम पड़ते ही आपके राज्य के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी, तो आप किसी तरीके से उसको यहां ले आओ। कोई ऐसी विधि नहीं थी कि उसको यहां पे लाया जा सके। बहुत उनके उसमें बहुत अचंभे में पड़ गए, उसमें विस्मय में पड़ गए, क्या किया जाए, कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए। और जनरली किसी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए स्त्री को ही भेजते थे, अब स्त्री तो जा ही नहीं सकती वहां पे, और स्त्री चली भी जाए तो उसको पता ही नहीं स्त्री क्या होती है, तो बात ही नहीं करेगा, और सोचेगा पता नहीं कौन सा नया जानवर आ गया उसको पता ही नहीं है। फिर भी राजा ने क्या किया, बहुत प्रयास करके एक दूसरे जगह पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जहां पे दूसरे राजा ने उनके पिता को, ऋषि सिंह के पिता को बुलाया। जब ऋषि सिंह के पिता वहां चले गए तो इनके जो इनके राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ वैश्य थी, जो केवल वैश्य ही नहीं थी, वो शास्त्रों को भी जानती थी, वेदों के ज्ञान को जानती थी, फिलोसफिकल काफी नॉलेज थी उसको, वो तैयार हुई कि मैं लेके आऊंगी। और राजा ने आगे नदी थी, उस नदी के ऊपर पूरा वो बनवाया, एक उसके जैसा ऐसा बना दिया जैसे कि वो जंगली हो, ऐसी बोट बना दी नदी के ऊपर बिल्कुल फ्लैट करके, ऐसा लगता था कि वो जंगल का ही एक हिस्सा है, और उसके ऊपर एक सुंदर सा महल बना दिया, वो कुटिया भजन जैसी होती है ना, बना दी। अब वो नदी के माध्यम से उस जंगल में पहुंची आगे, और फिर वो जब उसके ऋषि पिता जो हैं गए हुए थे बाहर, तो ऋषि श्रृंग के पास गई, अब उससे बात नहीं कर सकती थी वो, अगर इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो क्या बात करती, तो इसके साथ फिलोसफिकल डिस्कशन करके इससे बात की जा सकती थी, क्योंकि इसको पता ही नहीं स्त्री क्या है। तो ये गई स्त्री उसके पास, पूरा दिन उसके साथ चर्चा करती रही, पूरा दिन उसके साथ चर्चा करती रही, फिलोसफिकल डिस्कशन, और वो आंसर देता रहा, उसको बड़ा आनंद आ रहा था आंसर देने में। और जब रात हुई उसने कहा ठीक है मैं जाती हूँ, फिर उसने जाती नहीं हूँ जाता हूँ, और फिर उसने बोला कि ज्यादा अच्छा होगा हम भी आपके आश्रम में आए, हमने आपके आश्रम में कथा सुनी, हम भी साधु हैं, आप भी हमारे आश्रम में चलो। उसको पता होता ये स्त्री है तो नहीं जाता था, इसके साथ नहीं जाता फिर वो, पर इसको पता ही नहीं स्त्री होती क्या चीज है, और ये जो भगवान ने इस संसार के अंदर क्या बनाया है, नेचुरल अट्रैक्शन बनाया, पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। इसलिए शिला रूप गोस्वामी बोलते हैं कि पद्यावली में एक भक्त की वो लिखते हैं कि हे कृष्ण मुझ पे ऐसी कृपा करें जैसे एक स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति बिना किसी कारण के, बिना जान पहचान के स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, वैसे मेरा मन हमेशा आपके चरणों में आकर्षित होता है। तो ये स्वाभाविक आकर्षण होता है, भले ही वो नहीं जानता था स्त्री, फिर भी आकर्षित हो गया उसके प्रति, और उसको ये नहीं पता था कि इसके प्रति आकर्षण होने से मेरा नुकसान हो सकता है। उसने कहा ठीक है चलो हम भी आपके आश्रम में चलेंगे, आनंद तो आ ही रहा था उसको बात करने में, चला गया वहां पे, और वो क्या की उसी नदी के ऊपर जो उसका बना हुआ था उसके ऊपर ले गई, और लेकर गई, और फिर वो तैरते तैरते जब सुबह हुई तो वो कहां पे था, उस राजा के नगर में, राजा के नगर में पहुंचा, उसने जैसे ही पांव रखा बारिश हो गई, और तब तक उनके पिता को पता चल गया अभी वो क्या कर सकते हैं, और बाद में उसने उस वैश्य के साथ शादी कर ली और फिर राजा बन गया। तो इस प्रकार से हम इसका ये बताने का तात्पर्य ये था कि हमारे को दोनों चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, हमारे को ये भी पता होना चाहिए अविद्या क्या है, बोगस फिलोसफी क्या है, मूर्खों की फिलोसफी क्या है, और बुद्धिमान लोगों की फिलोसफी क्या है, भक्तों की फिलोसफी क्या है, असली फिलोसफी क्या है, हमारे को सब चीजों का पता होना चाहिए। इसलिए भगवान सब चीजें धीरे धीरे बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी अपने प्रवचनों में बताते हैं, यहाँ पे आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है, आगे भी और कई प्रकार का ज्ञान देंगे। और प्रभुपाद जी आप देखेंगे तात्पर्यों के अंदर कितने विस्तार से जो है इस बात को समझाएंगे कि निराकार क्या होते हैं, मायावादी क्या होते हैं, सब कुछ बताते हैं प्रभुपाद जी। तो जब यहाँ पे हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, या ये जो दसवां श्लोक है ये एक प्रकार से अनर्थ निवृत्ति है कि हमारे को पता लग जाता है भैया वीत राग भय क्रोध इन सब से मुक्त होते हैं, इसमें क्या होगा फिर। इसीलिए भगवान फिर ग्यारहवें श्लोक में बोल रहे हैं कि जिनकी नहीं हुई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथे भजाम्यम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। अगर कोई जो है काम क्रोध भय इन सब से भर करके कृष्ण की पूजा कर रहा है और कृष्ण से अपनी भोग इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तो कृष्ण कह रहे हैं मैं वो पूरा कर देता हूं। तो अगर ये खत्म हो चुका होगा वीत राग भय क्रोध, शुद्ध चेतना से भगवान की सेवा करेगा कोई तो भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा, भगवान की प्रेम सेवा प्राप्त करेगा। ये ग्यारहवां श्लोक है। तो मैं एक बार, हम आज ग्यारहवां श्लोक ले पाए हैं, यहाँ पे कौन बैठे हैं अभी ग्यारहवां भी नहीं लिया वास्तव में, तो इसलिए आप आगे का बारहवें श्लोक से दीजिएगा जिसको भी देना है। तो ये श्लोक है, आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः। आप में से कोई एक व्यक्ति बोलिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति, एक बार बात सब मेरे साथ बोल सकते हैं दोबारा से, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज से तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, है ना, कि कोई ब्रह्म ज्योति के रूप में देखता है भगवान को, जो भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में देखता है और जानता है कि इसके स्रोत भगवान है परंतु फिर भी ब्रह्म ज्योति से आकर्षित रहता है, वो बेवकूफ नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मवादी। वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, भगवान की ब्रह्म ज्योति से आकर्षित रहता है और जानता है कि कण कण में भगवान व्याप्त हैं और उनका एक परम रूप भी है, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मवादी। वो मायावादी नहीं है, पर जो सोचता है कि उस ब्रह्म में विकार आने के बाद कृष्ण प्रकट होते हैं वो क्या है, मायावादी, फर्स्ट क्लास बेवकूफ। परंतु जो भगवान का भक्त होता है, कंटेमिनेशन समझ लो आप, तो पर यहां पे प्रभुपाद जी क्या बोले, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। प्रेमान जन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिनके आंखों में प्रेम रूपी आदान प्रदान का जो अंजन लगा हुआ है वही लोग भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव में भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। इसके विषय में भी हमने चर्चा करी थी। कृष्ण सभी भक्तों के समान रूप से को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह यदि कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर रह रहा है, कोई सोचे कि भगवान में धाम में जाने के बाद नहीं, यदि कोई इस जगत में रह रहा है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो भी मुक्त कहलाता है। ऐसा बताया गया है, श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, या हरेर दास कर्मणा मनसा गिरा जीवन निखिलासु जीवन मुक्त सा उच्चते। जो अपने कर्म वाणी और वचनों से मन से निरंतर कृष्ण की सेवा में इस भौतिक संसार के अंदर भी लगा हुआ है, वो क्या है, जीवन मुक्त सा उच्चते। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि संसार में भी कोई रह रहा है तो वो जो भक्ति करता है वो क्या है, सुसुखम कर्तुम अभ्यम। संसार के अंदर लोग दुख उठा रहे हैं और भक्तों की स्थिति क्या होती है, विश्वम पूर्णम सुखायते, विश्वम पूर्णम सुखायते ब्रह्म इंद्रादि कीटायते, ब्रह्म महेंद्रादि कीटायते। पर भक्त की स्थिति क्या होती है, विश्वम पूर्णम सुखायते सुसुखम कर्तुम अभ्यम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पूरा विश्व उसके लिए सुखमय है, उसको दुख नहीं होता कहीं पे भी। और जो ब्रह्मा और इंद्र आदि का सुख जो है, पद जो है, उसको कैसा लगता है, कीट आए थे, कीट आए समझ रहे ना, कीड़े के समान, उसको मतलब ही नहीं है क्या है यहां पे चल रहा है। कोई कीड़ा चल रहा होता है, उनको साफ ध्यान देते हैं उसके ऊपर कभी, और ये हम बनना चाहते हैं कभी, तो वैसे ही जो भक्त होता है उसको ब्रह्मा जी की पोस्ट भी जो है कीड़े ऐसे लगती है। त्रिदश पूरा आकाश है पुष्पायते, और ये जो तीनों दशों के अंदर जो सुख जो है, सो कॉल्ड जो सुख है, तथा कथित सुख, वो उसको क्या लगते हैं, आकाश पुष्पायते। जैसे कि आकाश के अंदर फूल हो, आकाश के अंदर कभी फूल होता है, होता है कभी, विल्लो द विस्प, आकाश में कभी फूल होता ही नहीं। तो भक्त को लगता है कि ये बिल्कुल जैसे आकाश में फूल कल्पना है, वैसे ही संसार के अंदर जो भौतिक सुख है वो सब कल्पना मात्र है, वो सुख है ही नहीं। कैवल्य नरकायते, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने को वो क्या समझता है, तुच्छ, नरक के समान। और ये इंद्रियों को तो बिल्कुल ऐसे उसके वश में रहती है जैसे सांप के दांत तोड़ देने के बाद, दुर्दान देन्द्रिय दंतास काल पटली सर्प दंतास्त्रायते। जैसे कि सांप के दांत तोड़ दिए जाए तो वो किसी जीव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकता, काट नहीं सकता ना वो, वैसे ये जो इंद्रियां हैं सांप की तरह विषैली हैं, हमारे को इस संसार के अंदर फंसाती हैं। पर भक्तों की इंद्रियां ऐसी होती हैं जैसे सांप हैं पर दांत तोड़ दिए गए, कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकती उसको। और ये सब उसके ऊपर कैसे होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। यत कारुण्य कटाक्ष श्री चैतन्य नमामि हम, इस तरीके से प्रबोधन सरस्वती बोलते हैं। तो ये संसार के सुख जो है उसके लिए बिल्कुल बेवकूफ, मतलब बिल्कुल विल ऑफ द विस्प लगते हैं, परंतु उसको फिर भी कोई दुख नहीं होता, वो हर परिस्थिति में सुख में रहता है। इसीलिए यदि इस संसार के अंदर भी हम भक्ति के अंदर धीरे धीरे लीन होते हैं, आपको भी अनुभव होगा, जैसे जैसे आप में से कोई किस स्तर पर है, कोई किस स्तर पर है, जिसको भी हरिनाम में थोड़ा सा भी आनंद आने लगता है तो उनको अनुभव होगा कि इस संसार के अंदर जो सुख होते हैं वो बेकार लगने लग जाते हैं। ऐसा अनुभव है आप लोगों को, जब हम कीर्तन में भाग लेते हैं तो हमारे को ऐसा अनुभव होता है कि संसार के अंदर जो सुख है वो बिल्कुल नील है ना, अनुभव है आप सबको, कभी ना कभी तो ऐसा अनुभव होता होगा। और ऐसा अनुभव अगर ना होता होता तो लोग क्यों अपने इतने बड़े बड़े हैं, क्या है, हमारे गोस्वामीगण क्या छोड़ के चले थे, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत। हमारे गुरु महाराज जो है बहुत ही रॉयल फैमिली से है, बहुत ही रॉयल फैमिली से। उनके पिताजी जब 16 साल के थे तब उनके दादाजी ने उनके पिताजी को उस समय जो चलती थी सबसे पहली पहली जो गाड़ियां आई थी वो क्या है, ऑस्ट्रियन हेली कुछ ऐसे गाड़ी है ना, वो गिफ्ट दी थी जब 16 साल के जन्मदिन पे। ऐसी रॉयल फैमिली से, महलों में रहने वाले हमारे गुरुदेव, और अब सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन के पूरे संसार के अंदर घूम रहे हैं, खाते भी नहीं, दिन में एक बार खाते हैं मुश्किल से, अभी थोड़ा थोड़ा सा भी हेल्थ थोड़ा खराब है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं भक्तों के पुश करने पे कि थोड़ा सा खा लीजिए, खाते भी नहीं, सोते भी नहीं, और सुबह से लेकर रात तक प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो अगर यदि आनंद नहीं मिला होता इस नाम में तो कैसे कोई इतनी रॉयल फैमिली को छोड़ के आ सकता है। कोई छोटे घर परिवार को छोड़ के आ जाए तो समझ में भी आती है, घर में नहीं मिल रहा था इसलिए मंदिर में खाने के लिए आ गया। पर ऐसा व्यक्ति है जिसके घर से ऐसे कई मंदिर बनाए जा सकते थे, वो यदि छोड़ के घूमने लगे तो फिर तो बात बनती है ना कि इसका मतलब आनंद मिला उसका इस संसार में कुछ। गिरिराज महाराज उनके भी पिताजी ऐसे बहुत रॉयल थे, वो भी छोड़ के आ गए, और जब उनके पिताजी ने बोला प्रभुपाद जी को कि हम आपको अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हैं, आप जितना धन, ब्लैंक चेक दे दिया, आप ये ले लो और हमारे पुत्र को वापस कर दो, प्रभुपाद जी बोले देखो मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ जाता तो चले जाओ, ले जाओ। तो अब वो तो जाने वाले नहीं थे गिरिराज महाराज, तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं प्रभुपाद जी एक काम करो आप चेक ले लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। मीन्स अगर आप लो या मत लो मैं आपके साथ ही रहूंगा। और प्रभुपाद जी ने उनकी वाट लगा रखी थी, बॉम्बे के अंदर ऐसी रॉयल फैमिली से आए वो, और बॉम्बे में जुहू में मंदिर बन रहा था, बनाने के लिए भेज दिया उनको बिना किसी साझदार के, और वहां जंगल था उस समय जुहू बीच पे, और इतने मोटे मोटे मच्छर थे और उनके पास रहने की जगह नहीं थी, भक्त लोग बीमार हो जाते थे, इतने बीमार हो गए तो चले जाओ अपने घर, आपके घर में रॉयल फैमिली है। पर वो सुख जो है इस दुख के आगे, ये जो दुख मिल रहा है तुम्हारा सेवा या दुख सही तो परम सुख, आपकी सेवा में मिलने वाला दुख जो है वो ही परम सुख है, इस संसार का सुख तो क्या है तुच्छवत, क्या है ये गंद, क्या सुख है वो टेम्परेरी, क्या है उसके अंदर रखा हुआ तो समझ में नहीं आता, लोग क्या क्यों पागल की तरह घूमते रहते हैं उसमें। आप भगवान के लिए कीर्तन करो, गाओ, नाचो, और उसके अलावा आपको भगवान की जो सेवा करनी है करो, और इसमें जो दुख भी मिलता है तो भी इसमें आनंद होता है, भक्त नहीं छोड़ता कभी। रूप गोस्वामी पता नहीं कितनी हजार सोने की मुद्राएं जो है, सोने की मुद्राएं, सोने के सिक्के, ए आजकल के जो है सिल्वर के, सिल्वर भी नहीं है वो तो, पता नहीं क्या है वो, है ना, कई तो सिक्के ऐसे हैं जो कि केमिकल्स और कई तरह की धातुओं उठा के मिला मुलू के बनाए हुए हैं, उनको यूज करके जो है इतने सारे सोने के सिक्के जो है दान दे के आए हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं जंगल में, आज इस पेड़ के नीचे सो रहे हैं तो कल उस पेड़ के नीचे सो रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात जो भी कुछ हो रहा है आंधी तूफान सब में जो है इतना ही वस्त्र, घुटने तक का वस्त्र धारण किए हुए हैं, घुटने तक का वस्त्र, और घूम रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको जो सुख मिल रहा है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता इस संसार के अंदर कोई जीव, कल्पना भी नहीं कर सकता, प्राप्त करना तो क्या, कल्पना भी नहीं कर सकता जो एकदम संस्कार संसार में रमा हुआ जीव है। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको अगर सुख मिल रहा हो तो आप भी अभी सब कुछ छोड़ो, पहनो धोती और चल दो, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतने दुख की परिस्थिति में भी हम एक कंपैरिजन दे रहे हैं कि सो कॉल्ड देखने में जो दुख लगता है ऐसे दुख की परिस्थिति में भी भक्त को भक्ति का सुख इतना ऊंचा दिखाई देता है कि उसके सामने संसार के जो बड़े बड़े सुख हैं वो क्या लगते हैं, मलवत। महाराज भरत ने मलवत परित्याग कर दिया था पूरे पृथ्वी के साम्राज्य का, तो आप सबको भी अनुभव होगा कुछ ना कुछ स्तर पे, है ना, जब हम कीर्तन में भाग लेते हैं, जप करते हैं, या कोई हमारे जब गुरुजन जो हैं वैष्णव जब कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो हम सुनने बैठते हैं और वहां से जाना नहीं चाहते, कथा सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं। आइंद्र प्रभु जी वो 7 बजे कथा करना शुरू करते थे, और वो जब कथा करते थे उनको इतना आनंद आता था वो रुकते ही नहीं थे, बोलते जाते थे बोलते जाते थे, रात को 1:30-2 बजे तक, और जो उनके रूम में बैठे हैं वो बैठे ही रहते थे और बैठे ही रहते थे, और पता भी नहीं चलता था रात के 1:30 बज गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर असली रस है। तो जब हमारे, जब महाभागवत गण जैसे हमारे गुरु महाराज कथा करते हैं, श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज कथा करते हैं, कितने वैष्णवाज हमारे इस्कॉन के अंदर जब ये कथा करते हैं, तो आप देखो भक्त लोग कितने गंभीरता से सुनते हैं, कोई सोता भी नहीं है उसमें, बिल्कुल गंभीरता से सुनते हैं। और जब खत्म होने लगती है तो कथा, उनके हृदय में कष्ट होना शुरू हो जाता है कि कथा क्यों खत्म हो रही है। हमारे एक भक्त को हमने देखा था, तो वो एक ग्रंथ पढ़ रहे थे जिसके अंदर वैष्णवास की बायोग्राफी लिखी हुई थी, वैष्णवास का गुणगान था। जब वो ग्रंथ के आखिरी 3 पेज रह गए थे तो वो रो रहे थे। मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हो? कह रहे ये ग्रंथ खत्म होने वाला है इसलिए, मैं और जानना चाहता हूं इनके बारे में, इतना रस है इसमें। तो भक्तों को जो सुख मिलता है इस संसार के अंदर, उसके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती भगवत धाम में जाने के बाद की, तो फिर तो सोचना भी दूर की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहां पे भी वो सुख प्राप्त करता है, शुद्ध भक्त यहां पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहा है, क्योंकि यहां भी आनंद ले रहा है भगवान की सेवा में, वहां पे भी। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने सुसाइड लिखा है, आत्मघात समझ में आ रहे हैं सबको, आत्महत्या करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोकों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है भगवान उनके यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों की वांछा वांछित फल देते हैं। आपने कोई इच्छा रख के भगवान की पूजा करी तो भगवान वो इच्छा पूरा कर देते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा निपटा। भौतिक संसार की सुख पूरा करने में भगवान को कोई देर नहीं लगती, आपने कोई इच्छा करी भौतिक, भगवान पूरी कर देते हैं और भगवान खुश हैं, क्या निपटा चलो जान दो इसको, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते भगवान, क्या चाहिए हाँ लो चाह, ऐसे करते हैं भगवान। और जब भगवान से कोई कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो फिर मेरी क्यों सेवा कर रहे हो, मुझे आप चाहिए हो, फिर भगवान फंस जाते हैं। अब तो भगवान उसको कह नहीं सकते जाओ, भगवान कहते देखो मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं, तुम्हें ही ले चलता हूं। और कोई कोई भक्त ऐसे बोलते हैं कि अभी बाद में जाएंगे आपके साथ, पहले आप आओ, वहां भी चले जाते हैं भगवान। अद्वैताचार्य जी ने पुकारा भगवान को, आगे श्री चैतन्य महाप्रभु नीचे, और उनकी कृपा से पूरे ब्रह्मांड को लाभ हुआ है ना। इसलिए हमारे को भगवान से कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ऐसी भक्ति करनी चाहिए जो कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। हम कीर्तन कर रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो कृष्ण आपको खिलाने के लिए कर रहे हैं। अभी तो हमारी समस्या ये है कि हम कुकिंग कर रहे हैं, हमें हलवा खाना है इसलिए आपको भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे दिन का प्रयास करना, ऐसे दिन का प्रयास करना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी कंडीशनिंग है। तो जब भगवान को ऑफरिंग करें तब उनसे प्रार्थना चाहिए, करनी चाहिए, कृष्ण मैं जानता हूं मैं ये खाना चाहता हूं इसलिए आपको भोग लगा रहा हूं, मैंने इसमें तुलसी दल इसलिए रखा है क्योंकि मैं जो ऑफर करता तो आप लेते ही नहीं, ये तुलसी महारानी की मैंने इसमें अर्पित करनी है। अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण के ऊपर आप कृष्ण से प्रार्थना करें, स्वीकार करें, स्वीकार भी नहीं करें तो देख के थूक दें इसके ऊपर, एटलीस्ट प्रसाद बना दें हमारे लिए, थूकेंगे नहीं भगवान वैसे तो भगवान हमारे लिए प्रसाद बना दें। वास्तव में हम तो चाहते हैं स्वीकार करें, क्यों केवल देखें, और आपका प्रसाद खा के हमारा हृदय शुद्ध हो और आप हमारे पर ऐसी कृपा करें कि हमारे सौ हमारी खुद की भोग वांछा खत्म हो, एक दिन ऐसा आए कि हम आपके लिए ही कुकिंग करें और आपके प्रसाद का आस्वादन करें फिर। और फिर जब हम प्रसाद खाएं तो हमारे को इस चीज का आनंद आ रहा हो कि बहुत स्वादिष्ट है, हमारे को साथ साथ स्मरण हो कि ये भगवान के सबसे जो पूरे विश्व के अंदर मधुर चीज है, भगवान के अधर है, भगवान के है ना, अधरामृत है ये भगवान का, भगवान के अधरों से स्पर्श होके आया, होठों से स्पर्श होके आया है, श्रीमती राधा रानी के होठों से स्पर्श होके आया है, और ये जो अमृत है उनका झूठा प्रसाद हम खा रहे हैं, ऐसी भावना को लेकर हम उसका आस्वादन कर सकें, तो हमारे को प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से, और कोई भौतिक इच्छा नहीं। कृष्ण हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके लिए कुकिंग करेंगे, आपके लिए नाचेंगे, आपके लिए गाएंगे, आपके लिए बोलेंगे, आपके लिए खाएंगे, आपके लिए सोएंगे, सोएंगे भी कृष्ण के लिए कि हमारे को थोड़ी सी एनर्जी मिले अगले दिन फिर सेवा करें। हर चीज हमारे मन में होना चाहिए हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और जब ऐसी भावना होगी निश्चित रूप से हम उस परम दिव्य आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि फिर हम जब सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं हम अपने सुख की इच्छा ही नहीं कर रहे तो सुख मिलेगा ही नहीं, कृष्ण हमारे को आनंद देंगे, ऐसा नहीं है कि जब गोपी जन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार कर रही हैं तो वो तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जा रही हैं पर उनको खुद पसंद नहीं है। क्या ये मस्कारा लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी मैं लगाऊंगी, बिल्कुल बोगस है, एकदम गंदा, पर कृष्ण के लिए लगा लेती हूँ, ये क्या बिंदी लगा लेती हूँ, ये क्या सब बेकार है, ये ऐसी बेणी बनाऊंगी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल गंदा बंदा रह बन के मिट्टी लगा के रहना पसंद है, पर मैं कृष्ण के लिए ऐसे बन के जा रही हूं, ऐसा नहीं है, उनको भी आनंद आता है। पर मेन भावना क्या होती है, प्राइमरी डिजायर होती है कृष्ण को प्रसन्न करना, सेकेंडरी डिजायर ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली सुसुखम करतुम अव्ययम, हमारे को हमारी स्वाभाविक भावना होनी चाहिए कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि कृष्ण के लिए कीर्तन कर रहे तो हमें भी आनंद मिलेगा ही, तो वो आनंद बाय प्रोडक्ट है फिर, तो हमारे को याद रखना चाहिए। अतः जब तक, दूसरे शब्दों में, जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहता है उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं, जा ले भैया तू जा छोटे मोटे जादू करके खुश रहे, योग शक्ति है ना, छू गायब हो गया, हो जा गायब। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, कोई इच्छा हो या कोई इच्छा ना हो, मुक्ति का इच्छुक हो या ही मुक्त होना चाहता हो, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता हो, उसे पूरे समर्थन सामर्थ्य से भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिससे कि उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में हो, जिसका कल्मिनेशन, जिसकी टॉप मोस्ट, जो आप समझ गए ना, कल्मिनेशन कृष्ण भावनामृत में हो, कृष्ण भावना उसको प्राप्त हो। तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, कैसे भगवान बोल रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथा भजाम्यम, जो जिस भावना से मुझे सरेंडर करता है मैं उसके साथ वैसे रेसिप्रोकेट करता हूं। हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं, आप कर लो जैसे आप रेसिप्रोकेट करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब कोई पुत्र अपने माता या पिता से प्रेम करता है इस भावना से कि मैं इनको प्रसन्न करना चाहता हूं, तो माता पिता का प्रेम 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है अपने पुत्र के प्रति। वैसे तो प्रेम है ही है पर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। पर जब पुत्र आता है, जाता थोड़ी सी मसाज करी, मम्मी मम्मी साइकिल दिला दो, ठीक है जा दिला दूंगी, सो जा अभी सो जा, पर वो जाके सिर्फ मसाज कर रहा है, बेटा क्यों कर रहा है, कुछ चाहिए नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको पसंद करना चाहता हूँ, फिर और ज्यादा आनंद बढ़ता है, उनको लगता है कि देखो हमारा बच्चा हमसे कितना प्रेम करता है। वैसे ही कृष्ण चाहते हैं कृष्ण, और फिर वो अपने आप साइकिल दिलाओगे, है ना, आपको लगेगा कि इसकी जरूरत है दिलवा दोगे। वैसे जब भक्त भगवान को फुल्ली सरेंडर करता है तो कृष्ण कहते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन में लगे रहते हैं उनकी जो जरूरत है मैं पूरी करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक ही काम करने की जरूरत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग ऐसी आप आइए यहाँ पे प्रति सोमवार कथा सुनने, और यदि आपको अवसर मिले तो सुबह 8 से 9 भागवतम कथा होती है, जब भी आपको अवसर मिले सुबह आइए कथा सुनिए, भक्तों के माध्यम से वरिष्ठ भक्त लोग कथा करते हैं, हमारे गुरुजन भी आते हैं उसमें, और भगवत गीता का आप स्वयं भी घर पे अध्ययन कीजिए, और जो श्लोकास आपको बताए जाएं विशेष रूप से उनका अगर आप पहले से अध्ययन करके आएंगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी।